नमस्कार भारत, आज है 28 अगस्त दिन सोमवार और मैं हूं कुलदीप मिश्र। बलात्कार मामले में आज सुनाई जाएगी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा। रोहतक की सुरानिया जेल में लगेगी अदालत। हरियाणा और पंजाब में हाई अलर्ट।
पूरे प्रदेश में उचित पुलिस फोर्स का प्रबंध है। किसी भी जगह किसी भी अप्रिय घटना के लिए हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी समुचित प्रबंध है।
सिरसा में राम रहीम के आश्रम में पहुंचा बीबीसी। समर्थक बोले, नेताओं ने दिया धोखा। पटना में लालू यादव की रैली में विपक्ष के जुटान पर क्या सोचती है नीतीश कुमार की पार्टी? हाथ छोड़कर कहीं गलती तो नहीं कर दी?
रैली में कम आदमी आते हैं, ज्यादा आदमी आते हैं उतना महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण ये इश्यूज क्या है, क्या कोई मुद्दा था?
होगी वसुतुल्ला खान की डायरी और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। बलात्कार के आरोप में दोषी पाए गए बाबा गुरमीत राम रहीम को आज रोहतक जेल में लगने वाली विशेष सीबीआई अदालत सजा सुनाएगी। रोहतक और सिरसा समेत हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को बाबा गुरमीत राम रहीम को बलात्कार का दोषी करार दिए जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ था। इस हिंसा में 38 लोग भी मारे गए थे। अमेरिका के चौथे सबसे बड़े शहर ह्यूस्टन में भीषण बाढ़ आई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक टेक्सास प्रांत में अब तक का सबसे बड़ा समुद्री तूफान आया है। अब तक 75 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश पड़ चुकी है और शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। पूरे शहर में बिना नाव के चलना नामुमकिन सा हो गया है। घरों की छतों पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 20 हेलीकॉप्टरों की सेवाएं ली जा रही हैं। ह्यूस्टन से दक्षिण में 300 किलोमीटर दूर तटीय शहर कॉर्पस क्रिस्टी भी समुद्री तूफान से बुरी तरह प्रभावित है। राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार को टेक्सास का दौरा करेंगे। बाढ़ में फंसे एक ह्यूस्टन वासी ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस स्तर की बाढ़ का अंदाजा लगाया होगा। अभी भी मेरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पूरी तरह पानी से घिरा है और चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमने तूफान से बचने की तैयारियां की थी, हमने साफ पानी जमा किया है, भोजन इकट्ठा किया है, लेकिन दुकानों पर खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो गया था। कोलंबिया के विद्रोही संगठन फार्क के सदस्य हथियार डालने के ऐतिहासिक प्रक्रिया के बाद से पहली बैठक में समूह के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बोगोटा में हुई समूह की कांग्रेस के पहले दिन 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। समूह के नेता रोड्रिगो लंडोनो ने कहा है कि इस कांग्रेस के बाद फार्क पूर्ण रूप से राजनीतिक समूह बन जाएगा। शुक्रवार तक चलने वाली इस कांग्रेस के खत्म होने से पहले प्रतिनिधि नए राजनीतिक दल का नाम तय कर लेंगे। ये पार्टी अगले साल होने वाले आम चुनावों में हिस्सा लेगी। वामपंथी फार्क विद्रोहियों ने बीते साल सरकार के साथ शांति समझौता किया था, जिसके तहत समूह ने अपने हथियार डाल दिए हैं और 5 दशकों से चला आ रहा गृह युद्ध समाप्त हो गया है। टिमोशेंको के नाम से मशहूर समूह के नेता रोड्रिगो लंडोनो ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा,
मई 1964
को पैदा हुआ क्रांतिकारी हथियारबंद संगठन फार्क इस आयोजन के बाद से एक नए और पूरी तरह से राजनीतिक समूह में बदल जाएगा, जो कानूनी तरीकों से अपनी गतिविधियां जारी रखेगा। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति जिमी मोरालेस ने देश में संयुक्त राष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधी मिशन के प्रमुख को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में राष्ट्रपति मोरालेस ने इवान वेल्सा क्वेज को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। कोलंबियाई वकील इवान वेल्सा क्वेज ने ग्वाटेमाला के अभियोजकों के राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चलाए जाने की मांग का समर्थन किया था। राष्ट्रपति के आदेश के कुछ घंटे बाद ही ग्वाटेमाला की संवैधानिक अदालत ने आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि मोरालेस का कहना है कि अदालतों के पास विदेशी मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। कीनिया में प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। आज से प्लास्टिक बैग बनाने, बेचने या साथ लेकर चलने वाले लोगों को 4 साल तक की सजा या $38,000 तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। रवांडा और इरिटेरिया समेत कई अफ्रीकी देशों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध पहले से ही लागू है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। रोहतक की सुनारिया जेल में ही आज सीबीआई की अदालत लगेगी और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के मामले में सजा सुनाई जाएगी। इसके मद्देनज़र वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुनारिया जेल की ओर से जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और खबर है कि जजों और उनके सहयोगियों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ ले जाया जा सकता है। आज एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। गुरमीत राम रहीम को शुक्रवार को पंचकुला की विशेष अदालत ने बलात्कार के मामले में दोषी पाया था, जिसके बाद भड़की हिंसा और आगजनी में 38 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने अब तक 52 केस दर्ज किए हैं और 926 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश भर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं
और बाकी हर जगह पूरे प्रदेश में समुचित पुलिस फोर्स का प्रबंध है। किसी भी जगह किसी भी अप्रिय घटना के लिए हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी समुचित प्रबंध है। जैसे मैंने बताया, सरसा के लिए आर्मी को भी स्टैंड बाई किया जा चुका है और हमारे प्रबंध है रोहतक के लिए, उसके लिए एडीजी लैंड ऑर्डर और IG CID आज रोहतक जाके आए हैं।
ये थे हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू। ताज़ा हालात की जानकारी के लिए सीधे चलते हैं पंचकुला में अपने सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन के पास। रविंदर, कितने बजे तक सज़ा सुनाई जा सकती है और रोहतक में प्रशासन के इंतजाम को लेकर आपके पास क्या जानकारी है?
जी, आज रोहतक की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ पे पहले तो दोनों पक्षों के वकीलों की बहस होगी कि इस राम रहीम को कितने वर्ष की सजा देनी है। उसके बाद 2:30 बजे के करीब ये बहस शुरू होगी और 3 बजे के करीब सुनने में आया है कि उनके ऊपर फैसला किया जाएगा सजा के ऊपर। और रोहतक को एक तरह से, जो कि दिल्ली से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है, उसको एक किले की तरह तब्दील कर दिया गया है। पूरे एरिया को पैरामिलिट्री फोर्सेज अर्धसैनिक बलों ने और पुलिस ने घेरा डाल रखा है। अब 15,000 के करीब पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं, जवान लगाए गए हैं और राम रहीम के समर्थक पंचकुला की तरह रोहतक में पहुंचकर किसी तरह की हिंसा न कर सके, इसके लिए पुलिस का दावा है कि उन्होंने सारी तैयारी कर ली है। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और हरियाणा में जितने भी लोग कोई बाहर निकलेंगे तो उन्हें किसी ना किसी आईडी कार्ड पहचान पत्र अपना साथ रखना होगा, अगर पुलिस उनसे पूछती है तो। और जेल की तरफ जाने वाले सारे ट्रैफिक रूट को बदल दिया गया है। आदेश दिया गया है कि एक धारा 144 के तहत पूरी तरह लागू हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाल की तरह रोक दी गई है और दूसरे शहरों से डेरा प्रेमी रोहतक में दाखिल ना हो सके। किलेबंदी की गई है रोहतक के सभी एंट्री पॉइंट्स पे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सिंह रॉबिन, आप हालात पर नजर बनाए रखें। आज निगाहें रोहतक पर भी हैं और हरियाणा के सिरसा पर भी हैं, जहां डेरा सच्चा सौदा का मुख्य आश्रम है। हमारी सहयोगी शालू यादव कल किसी तरह डेरे के भीतर गईं और वहां उन्होंने कुछ डेरा समर्थकों से बात की, लेकिन बाहर आते ही उन्हें कुछ समर्थकों ने घेर लिया। दिलनवाज पाशा ने अब से थोड़ी देर पहले शालू यादव से बात की और सबसे पहले वहाँ के हालात पूछे।
जी दिलनवाज, आज कोई हिंसा की घटना तो नहीं हुई है, लेकिन कर्फ्यू लगातार बना हुआ है। स्थिति काफी तनावपूर्ण है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, अर्धसैनिक बल है और सेना की तैनाती है। गुरु राम रहीम के समर्थकों में भी यहाँ काफी गुस्सा है दिलनवाज। पिछले 2 दिनों में हजारों समर्थक यहाँ से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और उनके सामान की तलाशी ली जा रही है सिरसा के बॉर्डर पर पुलिस द्वारा, ताकि कोई भी हथियार अंदर से डेरे के बाहर ना जा पाए, क्योंकि आज जो फैसला आने वाला है कोर्ट का, उसके बाद भी उन्हें चिंता है कि उसके बाद भी हिंसा हो सकती है। जब हमने उन समर्थकों से बात करने की कोशिश की तो ज्यादातर लोगों ने कुछ भी कहने से इनकार कर लिया, बिल्कुल चुप्पी साध ली, लेकिन मीडिया की तरफ उनका जो गुस्सा था वो साफ दिखाई दे रहा था। उनका कहना था कि अंदर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, जो मीडिया जो भारतीय मीडिया चैनल्स पर जो सब कुछ दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने अपनी बात हमारे सामने रखी।
सारे प्रेमी जड़े बड़े थे वो तो कह रहे शांति रहो भाई, अपने तो शांति का मार्ग है, अपना नाम सिमरन करना है, जपना है, बस वो है। लड़ाई दंगा किसी से साथ नहीं करना, किसी का कोई नुकसान, किसी सरकारी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान नहीं करना। हाँ चल रहा केस, कितनी देर का चल रहा है, गवर्नमेंट दबाव डाली जल्दी, धोखा कर गया इन्होंने संतों के साथ, पॉलिटिशियन बंदे ने धोखा करे।
कितने लोग हैं अंदर?
ए मेरे ख्याल लाख डेढ़ लाख लगभग होंगे इस टाइम घटो घट।
बीबीसी की टीम को वहाँ जो डेरा का मुख्यालय है वहाँ जाने का मौका मिला, बाकी मीडिया को इन लोगों ने वहाँ अभी तक नहीं जाने दिया है, और कैसे हालात हैं अभी डेरा सच्चा सौदा में, आप क्या चीजें देख पाए वहाँ मुख्यालय में, ये जरा बताइए।
दिलनवाज पहले आपको यहाँ ये बता दें कि जब शुक्रवार को कुछ पत्रकारों ने डेरे के अंदर जाने की कोशिश की, जिस दिन ये फैसला आया था, उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया, उनकी गाड़ियों में आग तक लगा दी गई, लेकिन आज सुबह कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील हुई तो हम पीछे के रास्ते खेतों से होते हुए हमने भी डेरे में घुसने की कोशिश की, और अंदर हमने देखा कि ये जो हजार एकड़ में फैला हुआ जो डेरा का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या कुछ नहीं है, उसमें हॉस्पिटल्स हैं, उसमें एम्बुलेंसेज हैं, उसमें कपड़ों की दुकानें हैं जिसमें MSG के नाम छपे हुए टी-शर्ट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं, अंदर फैक्ट्रियां हैं, सिनेमा हॉल हैं जहां MSG की मूवीज चल रही थी, तो काफी सारी सुविधाएं हैं वहां पर। और यहाँ ये भी बता दें कि जब हम अंदर गए तो वहां पर एक हमने एक पूरा एक मीडिया सेंटर देखा जहां पर देश के हर चैनल का एक विंडो चलाया गया था और वो पूरी तरह से मॉनिटर कर रही थी, एक बड़ी टीम वहां मॉनिटर कर रही थी कि कौन सा चैनल इस खबर को किस तरीके से कवर कर रहा है। लेकिन जो वहां के जो ऑफिशियल्स थे, क्योंकि हम BBC हैं, हमने उनको कहा कि हम दोनों तरफ की स्टोरी जो है, कहानी जो है वो बताना चाहते हैं, हम आपका पक्ष भी आगे लाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमसे अच्छे से बात की, लेकिन हमारे बाहर जाने से पहले उन्होंने हमें ये चेतावनी दी कि आप हमारे कॉम्प्लेक्स में हैं तब तक आपकी हम सुरक्षा गारंटी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप बाहर गए उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं। और यही हुआ हमारे साथ, जैसे ही हम गेट से बाहर निकले तो बहुत सारे गुस्साए हुए समर्थकों ने हमें, भीड़ ने घेर लिया, काफी हिंसक होने लगे थे वो, लेकिन उन्होंने हमें वहां से बस जाने के लिए कह दिया जब हमने उनसे थोड़ी गुहार लगाई कि हम नेशनल मीडिया नहीं है, हम इंटरनेशनल मीडिया है, तो किसी तरह से हम वहां से अपनी जान बचाकर निकले।
ये थी सिरसा से BBC संवाददाता शालू यादव, बता रही थी डेरे के भीतर का माहौल। लेकिन डेरे के बाहर सिरसा शहर इस माहौल में कैसे सांसें ले रहा है, वहाँ बाजार बंद हैं, कामकाज ठप है, कल कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद वहाँ BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने लोगों से बात की और जानना चाहा कि शहर के लोग जो कुछ हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं।
ये कहना ठीक नहीं हुआ कि सिरसा में सन्नाटा पसरा है, शहर में जगह जगह पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं, हर नुक्कड़ चौराहे पर नाकेबंदी है जहां पुलिस लोगों की गाड़ियां रोक रोक कर चेक करती हैं। शहर में रविवार को थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई, रामादीन एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं।
6 बजे खुला था, उसके बाद 11 बजे फिर बंद कर दिए, पहले 2 दिन बंद था, रात को एक दिन 24 तारीख को 10 बजे ही बंद करवा दिए।
ये कर्फ्यू 24 अगस्त को लगाया गया था, इस बीच अदालत ने बाबा गुरमीत राम रहीम को बलात्कार का दोषी ठहराया, जिसके बाद हरियाणा के कई जगहों पर हिंसा भड़की, अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें कई मौतें सिरसा में हुई जहां डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है। राम रहीम इस डेरे के प्रमुख है। शहर के कुछ लोग मानते हैं कि अदालत का फैसला ठीक था।
नहीं, सजा जो हुई है, देखो जी, जो सिस्टम था मेरे हिसाब से ओके है, सजा ओके है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो यहाँ की जो अपने शहर के अंदर है सब मानते हैं ओके है,
मगर बिजनेसमैन कमल के लिए समय काटना मुश्किल हो रहा है।
डरे हुए लोग, कुछ ऐसा ना हो जाए भी जिससे शहर को नुकसान हो, वो नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो।
सचिन भाटिया कहते हैं,
ये 3-4 दिनों से बना हुआ और पूरी मार्केट वगैरह बंद है, सुबह 11 बजे तक खुली थी, उसके बाद दोबारा बंद करवा दी। इतने दिनों से जय शॉप बंद है तो उस करके हुआ ही है नुकसान, काफी दुकानें हैं और काफी नुकसान हुआ है।
हमें कुछ और लोग गली के पास बैठे मिले, हालांकि शहर के दुकानें पूरी तरह से बंद हैं, होटलों में हालांकि मीडिया की भीड़ है और वहां कमरे मिलना भी मुश्किल हो रहा है। इन्हीं लोगों के साथ बैठे थे सौरभ।
सरकार ने संभाला भी नहीं है जो मेन बात है, बाकी ये चीज देना चाहिए सेना के हाथ में, सेना कंट्रोल कर सकती थी। ठीक है मेंबर 36 बने लेकिन 36 मरे क्यों, है तो हिंदुस्तान के मरे क्यों, अगर ये सिस्टम 144 अपना लगाई है तो इतने में वहाँ हुए क्यों 1.5 लाख। लेकिन भैया जो देखो न्यूज़ में जो देखने हैं उसी हिसाब से सरकार के ऊपर नाम आएगा।
आज रोहतक में इस मामले पर सजा सुनाई जाएगी, शहर वालों में इसे लेकर अंदेशा है। प्रशासन ने डेरा खाली करवाने के लिए बसों का इंतजाम किया है और सिरसा के डिप्टी कमिश्नर रघुजोत सिंह ने BBC को बताया कि अब तक डेरा मुख्यालय से करीब 3,500 से 4,000 लोग बाहर भेजे गए हैं। फैसल मोहम्मद अली, BBC सिरसा।
मेरे साथ स्टूडियो में आज के अखबारों के साथ मौजूद हैं दिलनवाज पाशा। दिलनवाज, इस बड़ी खबर पर क्या कहते हैं दिल्ली से निकलने वाले अखबार, और इसके अलावा भी क्या हैं आज की प्रमुख सुर्खियां?
जी, आज के अखबारों में जो बाबा राम रहीम को सजा दी जाने वाली है उसको लेकर चौकसी बरतने की जो सबके लोगों मन में जो डर है वो डर आज सुर्खियों में दिख रहा है। पंजाब केसरी लिखता है सजा से पहले अलर्ट, वहीं जनसत्ता लिखता है बाबा की सजा का ऐलान, और इंडियन एक्सप्रेस का शीर्षक भी लगभग ऐसा ही है, हाई अलर्ट बिफोर डेरा चीफ सेंटेंस। शुक्रवार को जब सजा हुई थी, हिंसा हुई थी, 38 लोग उस हिंसा में मारे गए, उसके बाद आज क्या होगा, यही सवाल जो है अखबारों ने अलग अलग तरीके से उठाया है। कल पटना में लालू प्रसाद यादव की पार्टी में और विपक्षी दलों की, जिसमें 18 विपक्षी दल शामिल हुए, रैली थी, उससे जुड़ी खबरें अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि अखबारों ने लालू की रैली की तस्वीर छापी है, कुछ ने अलग अलग तस्वीर वो भी छापी है जो कथित रूप से बताई जा रही है फर्जी तस्वीर है ज्यादा भीड़ की,
जो लालू यादव ने ट्वीट की थी।
जी बिल्कुल, और उस पर कल सोशल मीडिया पर काफी बहस भी हुई है। हम भी ये नहीं कह सकते अभी तक कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन अखबारों ने उस तस्वीर को और जो एक न्यूज एजेंसी ने तस्वीर जारी की है जिसमें थोड़ा कम भीड़ दिखाई दे रही है वो छापी है। हालांकि तस्वीर जो भी सही है लेकिन भीड़ काफ़ी थी ये साफ नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक और खबर है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा लेकिन खबर है तो करना पड़ेगा। लखनऊ के एक अस्पताल में एक महिला के शव को कुत्ते नोच कर खा गए, और ये आज कई अखबारों में पहले पन्ने पर खबर है। हालांकि प्रशासन ने जो है कार्रवाई करते हुए मॉर्चरी में तैनात 4 लोगों को निलंबित कर दिया है, लेकिन जो मृतिका है उसके परिवारजनों का गुस्सा अभी भी कायम है। इसके अलावा अमर उजाला के पहले पन्ने पर एक खबर है दिल्ली की, जहां एक पूर्व मॉडल घर में कसीनो चला रही थी और इस पर पुलिस ने छापेमारी की, वहां से बड़ी तादाद में जो है जेवर वगैरह मिला है और कसीनो का सामान मिला है, और इसके अलावा कई नामी गिरामी लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। याद होगा पिछले जो एक जेवर में दुष्कर्म कांड हुआ था, काफ़ी चर्चा उस पर हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठे थे। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस कांड का जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने का दावा किया है। बताया जा रहा है, जो अखबार की रिपोर्ट कह रही है, कि अनिल बावरिया जो राजस्थान के हैं उन्हें एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एक तस्वीर है पीवी सिंधु की जो आज अखबारों में, कई अखबारों में पहले पन्ने पर है। बीती रात जो है फाइनल हुआ था बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का, उसमें पीवी सिंधु हार जरूर गई लेकिन उन्होंने बहुत से भारतीयों का दिल जीता है, और अखबार भी अलग अलग तरीके से इस बात को कह रहे हैं। जी कुलदीप,
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत शुक्रिया दिलनवाज।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के पटना में राजद अध्यक्ष लालू यादव की बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली में विपक्षी पार्टियों के कई नेता पहुंचे। लालू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दल बदलू कहा और उन पर कई आरोप लगाए। ये दावा भी किया गया कि इस रैली में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। यहां पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नेता गूगल अर्थ पर रैली में आई इस भीड़ को देख रहे होंगे। इसे लेकर राजद की पूर्व सहयोगी जदयू क्या सोचती है, यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने बात की जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी से, और सबसे पहले यही पूछा कि लालू की रैली की भीड़ की तस्वीरें देखकर उन्हें कैसा लगा।
देखिए, रैली में कम आदमी आते हैं, ज्यादा आदमी आते हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना महत्वपूर्ण ये इश्यूज क्या है, क्या कोई मुद्दा था? सारा परिवार लालू जी का, जिसके खिलाफ शरद यादव, हम, नीतीश कुमार, डायनेस्टिक सक्सेशन के खिलाफ लोहिया के कहने पर, जयप्रकाश के कहने पर लड़ते रहे, वो ऐसा नंगा नाच पिछले कई वर्षों से ना आपने देखा होगा, ना हमने देखा है, ना बर्दाश्त किया है। जेडीएस की रैली में नीतीश कुमार के परिवार का एक सदस्य हाजिर नहीं होता था। आज दोनों बेटे लॉन्च किए गए, धर्मपत्नी का भाषण हुआ, बेटी वेव कर रही थी, तो ये तो एक परिवार की एक रैली थी अपने पापों पर पर्दा ढकने के लिए, जो भ्रष्टाचार में फंसा है पूरा परिवार, तो उस पर पर्दा डालने के लिए कुछ पार्टियों के नेताओं को बुलाया था, और ये नकारात्मक थी, इसीलिए सीपीएम ने इससे किनार किया कि इसकी कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ममता मायावती ने इससे किनार किया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, ना तो भाजपा भगाओ थी और ना ये कोई ठोस कार्यक्रम दिए हुए थी, एक परिवार के लोगों को बचाने के लिए रैली आयोजित की गई थी।
जिस इशू को लेकर आप अलग हुए थे करप्शन के मामले को लेकर, लेकिन भीड़ को देखें तो लगता नहीं है कि आम जनता तक वो मैसेज गया है कि करप्शन को लेकर आप अलग हुए।
तो आप कल को कहेंगे कि राम रहीम का द्वारा किया गया बलात्कार भी ठीक है, क्योंकि कोर्ट के बाहर भी 2 लाख की भीड़ थी जो लगभग लालू जी की रैली के बराबर थी। जातियों के, धर्मों के, संप्रदायों के जो समूह हैं, वो क्या राजनीति की दिशा तय करेंगे? क्या जो नारे पंचकुला में लग रहे थे, राम रहीम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और वो बलात्कार का आरोपी है और उसके पीछे भी 2 लाख की भीड़ है।
बेशक इसमें लेफ्ट की गैर मौजूदगी रही हो, मायावती गैर मौजूद रही हो, लेकिन बड़ी संख्या में विपक्ष के जो थे वो नेता वहां पे पहुंचे थे, तो कहीं क्या ये एनडीए के खिलाफ एक जो विपक्ष की एकजुटता है, क्या उसको दिखाने की कोशिश कामयाब हो रही है?
विपक्षी एकजुटता का सबसे कारगर साफ सुथरा चेहरा परिवारवाद से दूर भ्रष्टाचार विरोध का नीतीश कुमार थे। अगर इन लोगों में कोई कार्यक्रम की एकता होती, कोई इनका बड़ा दिल होता, तो नीतीश कुमार ही इनके नेता हो सकते थे। जिस तरह का कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड है कि अपने अलावा किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में इन नेताओं को भी अखरेंगी।
ये जो भीड़ आई थी, आपको क्या लगता है कि ये कौन लोग हैं?
ये लालू यादव जी के समर्थक हैं। लालू जी जब चाहते हैं इतनी बड़ी रैली कर लेते हैं। ये जनता पहले भी लालू जी के साथ थी, जब 242 के हाउस में 22 सीटें मिली थी, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला था। ये तो हम इनके साथ चले गए तो 22 के 80 हो गए थे, अब ये 80 के फिर 22 हो जाएंगे जिस दिन भी अगला चुनाव होगा।
ये थे जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी, पलटवार में कह रहे थे कि लालू की रैली में कोई राजनीतिक दिशा नहीं थी।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आज सोमवार है और आज होता है वक्त वसुतुल्लाह खान की डायरी का। आज का मजमून नेताओं और बाबाओं पीरों के रिश्ते पर, जिसकी रवायत इधर भी है और उधर भी।
जब आप रोशनदान खोलते हैं तो ताज़ा हवा के साथ मक्खी और मच्छर भी अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप जमहूरियत का रोशनदान खोलते हैं तो आज़ादी की हवा तो खैर आती ही है, मगर इसके साथ वो चलन भी अंदर घुस आते हैं जिन्होंने लाखों दिमागों पे पहले से कब्जा कर रखा होता है, और फिर वो इस कब्जे से मिलने वाली ताकत को लोकतंत्र की रूह को बंदी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर यूं होता है कि जिसके पास जितने गुलाम उतनी ही उसकी वाह वाह। वोट लेना है तो गुलामों के राजा की चौखट पे तो आना ही पड़ेगा, माथा तो रगड़ना ही पड़ेगा, भला राजा से कौन सवाल पूछ सकता है? आप भले सेकुलर हों के नॉन सेकुलर, मगर गुरुजी की चौखट पे आप सिर्फ एक मंगते हैं, भिखारी हैं। सिंध में सब जानते हैं कि हज़रत मियाँ मिट्ठू किस तरह लोगों का धर्म बदलवाते हैं, मगर उनके मुरीदों की संख्या चूंकि लाखों में है, इसलिए मुस्लिम लीग हो के पीपल्स पार्टी के इमरान खान की तहरीक इंसाफ, मियाँ मिट्ठू सब के दुलारे हैं। पीर पगारा की सियासी ताकत उनके मुरीद हैं। पीर साहब जिस पे हाथ रख दें उसकी किस्मत खुल जाती है। विदेशी मामलों के भूतपूर्व मंत्री शाह महमूद कुरैशी अगर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के गद्दी नशीन ना होते तो मेरी तरह के ही शरीफ आदमी होते। बेगम आबिदा हुसैन अगर गादी नशीन ना होती तो उनके अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत या मरकज में मंत्री बनने के उतने ही इम्कानात होते जितने मेरे हैं। नवाज शरीफों या स्वर्गीय बेनज़ीर भुट्टो दोनों एबटाबाद के छड़ी बाबा के पास इस आस में जाते रहे कि बाबा जी अगर एक डंडा पीठ पे मार देंगे तो नसीब खुल जाएगा। आसिफ जरदारी के साथ पीर एजाज शाह भी पूरे 5 वर्ष राष्ट्रपति भवन में विराजमान रहे। पीर साहब रोज़ाना पहले काला बकरा कुर्बान करते, उसके बाद राष्ट्रपति को सरकारी काम काज शुरू करने की इजाज़त देते। भूतपूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी तो माशाल्लाह खुद पीर हैं। ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे और नया पाकिस्तान बनाने का नारा लगाने वाले इमरान खान भी पाक पतन की एक पीरानी बुशरा पिंकी बीबी के मुरीद हैं और उनकी कोई सलाह नहीं टालते। मगर जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है, उसी तरह बहुत से अच्छे पीरों, साधुओं, बाबाओं में भी कुछ फ्रॉडी खाल पहन के घुस आते हैं और फिर एक दिन सवालों की हंडिया चौक पे फूट जाती है। अब अगर सिरसा वाले बाबा जी को रेप केस में सज़ा ना मिलती तो फिर ये सवाल भी ना उठता कि उनका चाल चलन कैसा है, उनकी ताकत वैसी ही बनी रहती और हर लोकतांत्रिक उनकी चौखट पे माथा टेकता रहता। बात अच्छे या बुरे बाबा या पीर की नहीं, बात ये है कि क्या लोकतंत्र इसी का नाम है कि आप वोटों की लालच में बेचारे लोकतंत्र को भी किसी गुरु, किसी बाबा या किसी पीर के खूंटे से बकरे की तरह बांध दें। करोड़ों लोग आपको किसी आस उम्मीद में वोट देते हैं, मगर आपकी आस उन लोगों की गुलाम बनी रहती है जिन्हें कोई लगाम नहीं बांध सकती। अगर यही जमहूरियत है और जनता की बजाय बाबाओं की ही सेवा करनी है तो फिर बाबा गुरमीत राम रहीम या एबटाबाद के डंडे वाले पीर बाबा में क्या कमी है। दे दें सत्ता भी उन्हीं के हाथों में और खुद मुक्ति पा लें उनके चरणों में बैठ के।
वस्तुल्ला खान की डायरी कैसी लगी आपको, हमें लिखिएगा जरूर। और अब वक्त हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। ग्लासगो में कल विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल फाइनल पर सबकी नजरें टिकी थी, जहां भारत की पीवी सिंधु और जापान की नोजोमी ओकुहारा आमने सामने थी। लेकिन चैंपियन बनी सातवीं वरीयता हासिल नोजोमी ओकुहारा, जिन्होंने चौथी वरीयता हासिल पीवी सिंधु को 1 घंटे 50 मिनट तक चले कड़े संघर्ष के बाद 21-19, 20-22, 22-20 से हराया। ऐसी कामयाबी हासिल करने वाली वो पहली जापानी महिला खिलाड़ी भी बन गई। देखने वालों ने कहा, ये आज तक का सबसे शानदार महिला एकल फाइनल था। भारत के पूर्व एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना ने बताया कि कैसे ओकुहारा बनी चैंपियन।
नोजोमी ओकुहारा ने सिंधु को ऑल आउट अटैक नहीं करने दिया और सिंधु का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो अटैक है। सिंधु को एक तो जब वो पीछे खिला रही थी तो लेंथ बहुत ही अच्छी रख रही थी, बहुत अच्छे लिफ्ट कर रही थी और सिंधु को नेट के पास भी लेके आई और उन्होंने सिंधु को इतना मौका नहीं दिया कि वो खुल के अटैक कर सके। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वो सिंधु को कंट्रोल कर पाई।
थैंक यू वेरी मच एवरीवन।
उधर पल्लेकल में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। भारत के सामने जीत के लिए 218 रनों का लक्ष्य था, जो उसने रोहित शर्मा की शानदार 124 रनों की शतकीय पारी की मदद से 45.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी भी दमदार 67 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लाहिरू थिरामन्ने के 80 रनों की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 217 रन बनाए। भारत के जसप्रीत बुमराह ने 27 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही भारत ने 3-0 से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में भी 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बलात्कार के आरोप में दोषी पाए गए बाबा गुरमीत राम रहीम को आज रोहतक जेल में लगने वाली विशेष सीबीआई अदालत सजा सुनाएगी। रोहतक और सिरसा समेत हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका के चौथे सबसे बड़े शहर ह्यूस्टन में भीषण बाढ़ आई है। अब तक 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश पड़ चुकी है और शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। शहर में बिना नाव के चलना नामुमकिन सा हो गया है। कोलंबिया के विद्रोही संगठन फार्क के सदस्य हथियार डालने की ऐतिहासिक प्रक्रिया के बाद से पहली बैठक में समूह के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बोगोटा में हुई समूह की कांग्रेस के पहले दिन 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात 7:30 दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।